انشاءاللہ. یہ جو دو دعائیں ہم نے انٹرو میں پڑھی نا, اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. مل کے پڑھتے ہیں سارے ایک بار, پھر دیکھ کر کھول لیجیے بک پیج نمبر 5 اور سب مل کے پڑھیں. شاباش, شروع. شاباش, نیکسٹ بھی پڑھیے. آمین ثم آمین. دعا سمجھ کے پڑھا ہے نا, پڑھا کے مانگا مانگا, تو دعائیں سمجھ کے مانگنا ہے انشاءاللہ. آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے, علم کی فضیلت. پیج 9 ہے, آپ لوگ کھول لیجیے اپنی بکس کو. باہر تھوڑا سا آپ اندر روم میں لے لیجیے بچوں کو, تاکہ وہ بھی بیچارے مطمئن رہے. چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم نافع اور ہمارے اسلاف, اس میں سے ہم پڑھیں گے علم کی فضیلت. سیدنا زر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں اسال مرادی رضی اللہ عنہ کے پاس صبح کے وقت گیا. اچھا, جب کچھ سنیں نا تو تصور میں آپ بھی وہاں چلے جائیں. کوئی بھی چیز پڑھے نا تو اس کو ایک دم نہیں پڑھتے, سوچتے ہیں. جیسے اگر میں یوں پڑھوں, سیدنا زر کہتے ہیں میں اسال مرادی کے پاس صبح کے وقت گھر جاتا تھا کہ نہیں, آپ کا ذہن آپ کے لفظوں کے پیچھے ہو. میں بالکل ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جب میں بک سے ریڈ کرتی ہوں نا, تو میں ایسے ہوتے ہیں جیسے میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھی ہوں, گاڑی چلا رہی ہوں, اور میں گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں, کیونکہ ڈرائیور کا ذہن جو ہوتا ہے وہ گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو پڑھتے وقت بالکل ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوا کرے, کیونکہ خطرہ ہوتا ہے. جب ٹیچر خود بولتا ہے نا تو لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں, لیکن جب بک سے پڑھیں نا تو اکثر لوگ ڈسٹریکٹ ہونے لگتے ہیں. تو آپ بالکل نظریں گاڑیں صفحے پہ, پینسل ہے تو ہر لفظ کے اوپر پینسل رکھے جہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب ایک صحابی ہیں رزر اور جا رہے ہیں ایک اور کے پاس. کیا کہتے ہیں, صبح کے وقت گیا اور میں چاہتا تھا کہ موزوں پر مسح کرنے کے متعلق ان سے حدیث پوچھوں. انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا علم کی تلاش میں. انہوں نے کہا کیا تجھے خوشخبری نہ دوں؟ ذرا دیکھیے ان کے معیار بھی کیا تھے. میں نے کہا کیوں نہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہوئے کہا. مرفوع کے بہترین قسم ہے, رفع سے, یعنی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. مرفوع حدیث بیان کرتے ہوئے کہا, بے شک فرشتے طالب علم کے لیے اپنے بازو زمین پر بچھا دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس کی طلب سے خوش ہوتے ہیں. تو اب اس سے آپ کو کیا پتہ چلا, آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ علم ہے. کس کس کو یقین ہے کہ اس وقت فرشتوں نے آپ کے لیے بازو پھیلائے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ, کتنے خوش قسمت ہیں آپ. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا, دلہن کے راستے میں پھول بچھائے جاتے ہیں, بڑے لوگ آ جائیں تو سرخ رنگ کا کارپیٹ بچھا کر اس پہ ان کو چلایا جاتا ہے. شاید آپ باہر آئے ہوں تو مٹی ہو, کیچڑ ہو, دھول ہو, پتھر ہو, لیکن پورا یقین رکھیں کہ فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا, اللہ اس کی وجہ سے جنت کی طرف اس کا راستہ آسان کر دے گا, اور جسے اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. سوچیے, علم کی طلب میں چلے جنت کا راستہ آسان ہے. اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس جگہ تک پہنچنا مشکل لگا ہو, ابھی بورڈ بھی نہیں لگا, نئی جگہ ہے, کسی کو ہو سکتا ہے ملی نہ ہو, لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ مدرسے کا راستہ نہیں تھا, جنت کا راستہ. یہاں آنا تو آپ کے لیے ایک دن مشکل ہوا نا, اگلی دفعہ تو نہیں بھولیں گے, بٹ جنت میں جانے والا ہر دن بھولتا ہے. جب تک علم کی شمع ہاتھ میں نہ ہو, جنت میں جانے کا راستہ واضح ہوتا ہی نہیں. اور یاد رکھیے, جتنی ہماری دنیا بڑھتی رہتی ہے نا, اتنی جنت کا راستہ ہم سے کھو جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے, علم کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائے رکھنا ہے. اور یہ جو آخری حصہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے نصب آگے نہیں کرے گا. اس کی مثال حضرت نوح کا بیٹا, نبی کا بیٹا تھا, نصب کتنا اچھا, لیکن اس کا عمل اچھا نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, تو پیچھے رہ گیا. اور اسی طرح آپ دیکھیے कितने इसमें और मिसालें मौजूद हैं। तो क्या पता चला कि ये सोच लेना कि मैं सैयद हूँ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हूँ, मैं हाशमी हूँ और मेरी तो पुश्त पाक है, या मेरे तो ख़ानदान में मेरे ससुर तो बहुत बड़े आलिम थे और मेरे दादा तो आलिम दीन थे। नहीं, आप क्या हैं? अक्सर लोग तारुफ कराते हैं फ़लाँ 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 की पोती हूँ। भई आप खुद क्या हैं? देखिए, कभी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हुआ, डॉक्टर का पोता डॉक्टर हुआ, तो आलिम का पोता और आलिम का बेटा आलिम कैसे हो सकता जब तक उसने ख़ुद मेहनत नहीं की। इसी तरह से वह भी मंबा का कौल है, जिस मजलिस में इल्म की गुफ्तगू की जाए मेरे नज़दीक वो नफिल नमाज अदा करने से बेहतर है। शायद के लोगों में से कोई इसकी बात को सुन ले तो वह एक बरस तक या जब तक इसकी उम्र हो इसे फ़ायदा देती रहे। बस आप देखिए कि हम यहाँ बैठे हम इल्म ले रहे हैं ना, कितना आसान था अगर हम अपने घरों में इस वक्त बैठकर नफिल पढ़ रहे होते। कई लोग वज़ाइफ़ कर रहे होते, कहते मैं क्लास में नहीं आ सकती, मैं वजीफ़ा कर रही हूँ। अब आप देखिए, आप नफिल पढ़ते तो क्या जो अच्छी अच्छी बातें हम यहाँ सीख रहे हैं वो सीखते? तो इल्म हासिल करना नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। नफिल में आप गलती कर रहे हैं, कोई नहीं टोकने वाला। हो सकता है आज की महफिल में ही आपको कोई एक ऐसी बात पता चल जाए जो आपके अमल में कमी थी। आप अत्तहियातुलिल्लाह अत्तहियातुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, रुकू आप पूरा ही नहीं कर रहे, कमर सीधी नहीं हो रही, सजदे में जा रहे हैं तो कमर नहीं टिका रहे। तो आज अगर आपको ये दो बातें पता चल जाए तो वो 100 नफिल पढ़ने से बेहतर होगा ना, ये मतलब है इसका। शुरख बील बिन शुरैक बयान करते हैं कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन हम्बली रहमहुल्लाह को ये कहते हुए सुना, तुम अपने भाई को दानाई की बात कहो, इससे बढ़कर कोई हदिया नहीं है। आज अमूमन हम लोगों को तोहफे में क्या देते हैं? कपड़े, जूते, घर की चीज़ें, बेडशीट, और क्या देते हैं?
बर्तन।
और अच्छा, वो देते हैं जो पहले ही बहुत है सबके पास, ऐसे ही ना। आज से आपने किसी को तोहफा देना कोई एक अच्छी सी बात, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या लोग सोचेंगे, पता नहीं आप क्या देंगे, आपके ये अच्छी बात, मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। आप देखिए कि टेस्ट बदलने की बात है। अच्छी बात समझ आ जाए ना, किसी की एक अच्छी बात बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल देती है। कई साथी ऐसे हैं, मिसालें देते हैं ऐसे थे, एक सिस्टर थी तो वो किसी क्लास में आती थी, तो उन्होंने क्लास के बाद डिस्कशन में शेयर किया, कहने लगी कि आज सुबह घर से जब निकली तो मियाँ से तू तू मैं हो गई को बात, गुस्से में वो भी आ गए, मैं भी आ गई, बोलने लगी। क्योंकि क्लास का टाइम था, कहने लगी, मैंने उनसे कहा अभी मैं जा रही हूँ, रात को खुल के बात हो गई, धमकी दे के आ गई, कुछ उन्होंने भी गुस्सा किया होगा। इधर आई, अल्लाह का हुक्म देखिए, उस दिन की क्लास में सारी बात फॉरगिव फॉरगेट थी, रिश्तेदारियाँ, सिला रहमी, माफ़ कर देना, जब पूरी बात हो गई तो एंड पे डिस्कशन में उन्होंने ये बात की कि अगर आज मैं क्लास में ना आती तो हो सकता है हम दोनों का बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा होता और शायद घर टूट जाते। ऐसे ही टूटते हैं घर, रह जाते नहीं टूटते। बट आज की बात सुनकर मैंने सोचा है कि मैं इस मौजू पे अपने शौहर से कोई बात नहीं करूँगी, बल्कि माफ़ी मांगूँगी। अब मुझे बताइए, क्या उस रात झगड़ा होने का ख़तरा रहेगा फिर? तो हमेशा से अपने लिए यह असूल बनाइए कि इल्म की महफिल में आना है और वहाँ से खैर की बात लेकर जानी है। इल्मे नाफे की कोई बात बताना मुस्तहब ने की है। मुस्तहब किसको कहते हैं? पसंदीदा, हुब से, अल्लाह को बड़ी पसंद है, रिकमेंडेड है। और तमाम नवाफिली बातें भी मुस्तहब ने किया हैं। चूँकि इल्मे नाफे सदक़ा जारिया भी है, इसलिए ये दूसरी मुस्तहब नेकियों के मुकाबले में अफजल है। क्या पता चला? अच्छी बात बताना ऐसी नेकी है जिससे मोहब्बत की जाती है। नफीली बातें भी अच्छी हैं, चूँकि इल्मे नाफे सदक़ा जारिया। देखिए ना, आपने एक अच्छी बात जहाँ सुनी, अब यहाँ से उठेंगे तो आप घर जाके ज़रूर अपने घर वालों को बताएंगे। हो सकता है आपका बच्चा वो बात कल अपनी किसी दोस्त को बता दे, तो वो बात चलते चलते आपके लिए सदका जारी हो जाएगी। حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے یا معلم اور متعلم کے۔ کیا پتہ چلا؟ ملعون لفظ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا اس پہ لعنت ہے۔ لفظ جو ملعون ہے نا، لعنا سے ہے، لام عینون، آپ قرآن کے سفر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لعن کہتے ہیں بودھ کو، اور بودھ ہے دوری۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں پر لعنت ہے، تو اس کا اصل مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب کسی کو آپ کہیں آپ پہ لعنت ہے، اچھا لگتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر اس کا اپوزٹ دوسرا کہیں کہ دیکھیے آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، فرق ہے نا۔ تو ہمیشہ چن کے لفظ بولیں، بچوں سے، نوکروں سے، گھر والوں سے، باہر والوں سے، ہمسایوں سے، اچھا لگتا ہے کوئی وہ، جو اچھا نہیں لگتا سب سے پیارے لفظ بولیں۔ دیکھیں، ہمارے لفظ ہی ہیں جو دوسروں کے دلوں میں ہماری جگہ بنائیں گے یا ہمیں ان سے دور کر دیں گے۔ اگر دنیا کا استعمال کسی نیکی کے حصول کے لیے کیا جائے تو وہ ملعون نہیں ہے، جیسے کمانا، اس لیے کہ اس کمائی کو استعمال کرنے سے قوت ملے گی اور عبادت اچھی ہو سکے گی، یا لباس کا استعمال، اس لیے کہ نماز میں سطر ڈھانکنے اور عام حالت میں بھی سطر ڈھانکنے کا حکم ہے، لہٰذا بطور فیشن نہیں بلکہ بطور سطر ڈھانکنے کے لباس کا استعمال ضروری ہے، یہی ہر چیز کا حکم ہے۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا کا علم آپ لیتے ہیں تو وہ برا نہیں ہے، اس سے آپ دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ کمائیں گے، روٹی کھائیں گے، طاقت ملے گی۔ اگر اب ہم دیکھیں کھانا نہ کھایا ہو تو بھوک لگے گی نا، نیند آئے گی، سر میں درد ہوگی، تو آپ بیٹھ کے غور سے نہیں سنیں گے۔ تو دین اور دنیا کا خوبصورت امتزاج ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ کے اس موسم کے مطابق کپڑا ہی نہیں ہے تو آپ کو سردی لگ رہی ہے، تو آپ کیسے چین سے بیٹھیں گے؟ تو ہر چیز میں یہ یاد رکھیے، دین اور دنیا مل کر ہماری خوبصورت طریقے سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے عمر بن عبدالعزیز سے سنا، انہوں نے کہا، اگر میں طاقت رکھوں تو عالم بنوں گا، پھر اگر اس کی طاقت یعنی استطاعت نہ ہو تو متعلم بنوں گا، یعنی علم سیکھنے والا، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو میں ان دونوں سے محبت کروں گا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ان دونوں سے بغض نہیں رکھوں گا۔ دیکھیے، چار سٹیپ میں لکھیں اپنے لیے۔ سب سے پہلا گول کیا ہے؟ کہ میں عالم بنوں، خود علم لو، اتنا ہو کہ میں دوسروں کو دوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں ابھی اتنا نہیں، تو متعلم بنیے، دوسروں کو دیں۔ دیں گے کب؟ جب لیں گے، اور لینا شروع ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد آپ دینے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری صورت ہے کہ دونوں ہی نہیں پاسیبل، تو پھر پیار کریں، ہائے میں کیوں نہیں ان لوگوں میں شامل ہوئی، میں درس میں کیوں نہیں گئی، میں اس علم کی محفل سے کیوں محروم ہو گئی۔ اب یہ بھی نہیں ہو رہا کبھی، لیسٹ پھر نفرت نہ کریں۔ آج آپ کو پتا کہ دین والوں سے کتنے لطیفے اور کتنی بیکار باتیں جوڑ دی گئی ہیں، اور حلوے کے ساتھ مولوی صاحب کا تصور آتا ہے۔ کیا حلوہ صرف مولوی صاحب کھاتے ہیں؟ کیا میٹھا صرف مولوی صاحب کھاتے ہیں؟ مرغی کا گوشت صرف مولوی صاحب کھاتے ہیں؟ لیکن یہ آج کے دور کا المیہ ہے، ہم نے دین کے علم کو بدنام کر دیا۔ اور اب دیکھیں محاورے، ملا کی مسجد، ملا کی دوڑ مسجد تک، یعنی ایک نماز پڑھی آپ دوسری میں بھاگ رہے ہیں، جن کو کیا پتا۔ تو یہ کانسیپٹ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں رحمہ اللہ، اگر نیت نیک ہو تو طلب علم سے افضل کوئی عمل نہیں۔ چلیے ہم سب اپنی نیتوں کو چیک کریں۔ آپ میں سوچ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اس وقت سردی لگ رہی ہو، آپ ان صحابہ کو یاد کیجئے جو یخ سردی میں کھلی جگہوں پہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں علم لیتے تھے حدیث کا۔ اور اگر کسی کو گرمیوں میں گرمی ستا رہی ہو تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام نے ہر موسم، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں کا فرق دیکھے بغیر اللہ کے نبی سے فیض حاصل کیا تھا۔ ہمیشہ یہ دیکھیں مل کیا رہا ہے، سردی لگ رہی ہے تو اندر جوش پیدا کرے، گرمی پیدا کرے۔ ایمان کی گرمی، گرمی سردی سے بے نیاز کرتی ہے، اسی طرح دوسری طرف بھی ہے۔ عبیداللہ بن نبی جعفر رحمہ اللہ کا ایسے منقول ہے، عبیداللہ بن نبی جعفر رحمہ اللہ سے منقول ہے، علماء شہروں کا مینار ہیں۔ مینار کیا ہوتا ہے؟ ٹاپ کی چیز، نور سے منور، مینار، نور، ایک ہی لفظ ہے۔ ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے جس سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ اس لفظ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا حقیقت میں دین داروں کو اتنی قدر اور عزت حاصل ہے؟ الحمدللہ، جو علم سے پیار کرتے ہیں وہ علم والوں کو اتنی عزت، اتنا پیار دیتے ہیں کہ شاید ان کو حیا آنے لگتی ہوگی۔ لیکن وہ لوگ علم والے کی قدر نہیں کرتے جو علم سے بغض رکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ فالتو اور بیکار لوگ ہیں. یعنی ان سے علم کی روشنی حاصل کی جاتی ہے جن سے لوگ نیک امور کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، میں دنیا کی حسنہ سے مراد رزق طیب اور علم ہے، اور حسنہ آخرت سے مراد جنت ہے. کبھی آپ نے یہ تعریف سنی حسنہ کی؟ علم والوں کی نظر میں دنیا کی سب سے حسنہ نعمت علم ہے. سچ بتائیں، آپ میں سے کس کو اس وقت اچھا لگ رہا ہے؟ کون انجوائے کر رہا ہے؟ کون اس وقت خوش ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ تو پھر اس سے بڑا حسنہ کیا ہے؟ اور یقین کریں، سب غموں سے بندہ بے نیاز ہوتا ہے. میں نے دیکھا سر میں درد لگا ہوتا ہے، آپ آ کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد یاد ہی نہیں رہتا. گلے میں درد ہے، بولا نہیں جائے گا، آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے بھول ہی جائے گا، آپ کی آواز نکلے گی. بڑے سے بڑا غم یہاں کے بھولتا ہے، شرط ہے کہ آپ اس کام میں ڈوب جائیں. اس وقت آپ سب بھی اپنے دل کو سارے غموں، تفکرات، خوشیوں، ایکسائٹمنٹ سے بے نیاز کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح مطرف ابن الشخیر کہتے ہیں، علم کی فضیلت مجھے عبادت کی فضیلت سے زیادہ پسند ہے. اچھا، اس کے برعکس ہمارا کلچر کیا ہے؟ تسبیح نماز پڑھنی ہے، اور پتہ نہیں جو کلمہ اس میں پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہا، رکوع کر رہے ہیں تو برا ہی نہیں کر رہے، سجدہ کر رہے ہیں تو صحیح نہیں کر رہے. اور ہمیں کیا شوق ہے؟ 100 نفل پڑھنے ہیں. مجھے ایک بزرگ نمایاں سسٹر تھی، یعنی نہ بہت جوان تھی نہ بوڑھی تھی میلی، کہتی میرا ایک سوال ہے، جواب دے. مہنگا جی، کہتی میرے اوپر کئی 100 نفل ہیں جو میں نے منت میں ماننے ہوئے ہیں، اب میں پڑھ نہیں پاتی، اور پڑھتی ہوں تو میاں ناراض ہوتے ہیں، کئی دفعہ ساری ساری رات پڑھتی ہوں. میں نے کہا کیسے، اتنے نفل آپ پہ کیسے آ گئے؟ کہتی بس میری عادت تھی، جب بھی میں کسی جگہ پھنسی ہوں، مثلا بیٹا گھر نہیں آیا، ہائے اللہ خیر سے آ جائے، میں 100 نفل پڑھوں گی. اور وہ 100 کا کھاتا کھل گیا، بیٹے نے تو آ ہی جانا تھا، خیر سے تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا، اور وہ 100 نفل رہ گئے. کسی وقت کوئی مسئلہ ہے، کوئی خبر سن لی، ہائے اللہ یہ ہو جائے، میں 50 نفل پڑھوں گی. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں نفل ان کے سر پہ پڑے ہیں. اب پڑھتی ہیں تو مشکل، ہمارے یہاں بڑا پسند کر ساری رات نفل پڑھنا، ساری رات جاگنا، اسلام میں ایسا نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کام کرو جس کی طاقت ہے. اس کے برعکس علم، ہائے روز، ہائے 3 دن، ہائے 4 گھنٹے، ہائے 3 گھنٹے، ہائے 2 گھنٹے. آپ دیکھیں صرف ایک شادی کتنے گھنٹے لیتی ہے ہمارے، اگر آپ 3 دن نہ بھی جائیں، چلے 2 دن تو جاتے ہی ہیں نا قریبی شادیوں میں، 3-3 گھنٹے بھی لگا لیں کم سے کم، تو 6 گھنٹے تو صرف ہم ایک شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور اگر اس کی تیاری اور اس کا آنا جانا اور اس کی شاپنگ کاؤنٹ کر لیں تو کئی گھنٹے ہیں اس کے اندر. علم کے لیے وقت لگانا ہے انشاءاللہ تعالی. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جبکہ عبادت کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچتا ہے. سفیان بن عیینہ کا قول ہے، کوئی چیز علم نافع سے زیادہ نفع دینے والی نہیں، اور کوئی چیز اس علم سے زیادہ نقصان دینے والی نہیں. یہ نوٹ کیجئے گا بات، کوئی چیز نفع والے علم سے زیادہ نفع والی نہیں، اور کوئی چیز اس علم سے زیادہ نقصان دینے والی نہیں. کیا پتہ چلا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا مطلب اس کا؟ جی آپ بتائیں. آپ دیکھیں چھری ہے نا، پیچھے سے ہینڈل سے پکڑیں گے پھل کاٹیں گے، اور ہینڈل کی جگہ سے آپ آگے وہ جو کاٹنے والے سے وہاں سے پکڑیں گے تو ہاتھ کٹے گا. اصل علم ہے، آپ اس کی وجہ آگے بھی پڑھیے گا، کیونکہ علم نافع کا غلط استعمال یا حاصل کرنے کی غلط نیت اسے نقصان دینے والا بنا دیتی ہے، اور ہر وقت چکننا رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی غلط فتویٰ نہ دے بیٹھے، یا دل میں عجب، عجب کہتے ہیں خود کو بڑا سمجھنا، پسند کرنا، خود پسندی یا ریا نہ آ جائے. تو کیا پتہ چلا؟ علم لینے کے بعد اور ڈرنا چاہیے، اپنے بارے میں خوف زدہ ہو جائے ایک انسان. ابو جعفر منصور نے اپنے بیٹے مہدی سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ مہدی کی کنیت ہے، تم صرف اہل علم کے پاس بیٹھو. کیونکہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث مذکر ہے، اور اسے مذکر لوگ ہی پسند کرتے ہیں، اور واقعی یہ بات زہری نے سچ کہی ہے. کیا مطلب مذکر کیا ہے؟ یعنی یہ مردوں کا کام ہے، حوصلے والوں کا کام ہے، تذکیر لینے دینے والوں کا کام ہے. تو کیا پتہ چلا کہ علم والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. सुफियान सॉरी का कॉल है, जब मैं जवान था तो रियासत की तमन्ना करता था। जैसे आप देखिए यंग लड़कों को शौक होता है ना, गाड़ी का, घर का, बंगले का। और जब किसी आदमी को फतवा देते देखता तो इस पर भी रश्क आता या इस पर भी रश्क करता। अब जब इल्म हासिल करके इस मर्तबे पर पहुंचा हूं तो मुझे इसकी कदरों मंजिलत का पता चला। और याद रखिए, सारी ज़िंदगी बंदा दुनिया कमाता है। हमारे पास क्लासेस में कई 50 साल के करीब, 60 साल के करीब की भी बुज़ुर्ग ख़वातीन आती हैं। नॉर्वे में हमारी क्लास है तो वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जो मतलब हमारी एक साथी हैं, तो उनकी सास भी हैं। माशाल्लाह वहाँ हमारा तकरीबन 8वां साल है। आप तो भी यहाँ शुरू हो रहे हैं ना, आप दुआ करें 8 साल बाद पता नहीं आप कहाँ पहुँच चुके होंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन वो जब आई थी तो 70 साल की थी। तब से मुझे याद है वो अम्मा क्लास में आती थी दुबली पतली धान पान, और आके पूरी तैयारी, सबसे ज़्यादा वो तैयार होके आती थी, सफ़ेद स्कार्फ, सफ़ेद जोड़ा, चादर, मैचिंग लेके, और बिल्कुल ऐसे कहती थी, जब मैं आती हूँ पढ़ने के लिए तो मैं अपने आप को 20 साल की लड़की समझती हूँ। फिर वो आके बैठती थी, जब तक उनमें हिम्मत थी कुर्सी पे आगे डेस्क अगली चेयर पे बैठना, लिखना नहीं आता था लेकिन बैठ के ऐसे लगता था लिखती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तर्जुमा याद करना शुरू किया। फिर जब हम टेस्ट लेते हैं सब जो देना चाहते हैं उनसे, तो वो कहती थी मैंने भी देना है। अब लिखना नहीं आता ना, तो एक साथी उनको प्रोवाइड किया जाता था, वो बोलती थी तो उनका टेस्ट पेपर कोई लिखता था। और अब ये पिछले 1-2 साल पहले उन्होंने बताया कि मुझे तर्जुमा याद हो गया, घर जाके अपनी बहू के साथ दौर करती थी। अब माशाल्लाह वो मेरे हले 78 ईयर्स की हो चुकी हैं, हर नए कोर्स में उनका नाम, फीस भी देती हैं, किताबें भी ख़रीदती हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं। कहती है मैंने आखिरी दिन तक मैंने तालिब इल्म बन के जाना है। और वो खुद रोती हैं, कहती हैं ज़िंदगी ज़ाया कर दी। जी आप तड़प है उनको, वो कहती मैं घर में खुश नहीं रहती, इतने आती हैं। और हमारा 4th फ्लोर है, कभी लिफ्ट ख़राब हो तो 40-50 सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, आती हैं शो। और डॉक्टर घर वाले भी कहते हैं कि अम्मा जाती हैं तो ठीक रहती हैं, घर रहती हैं तो लड़ती रहती हैं। ये अक्सर अम्मियों का शक मसला होता है। जी सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा, ए बनु अब्स के भाई, इल्म तो बहुत से हैं जबकि उम्र थोड़ी सी है, लिहाजा वो इल्म हासिल करो जो तेरी दीनी ज़रूरियात को पूरा करे और बाकी उलूम को छोड़ दे। सलमान फ़ारसी ने हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा, ए बनु अब्स के भाई, इल्म तो बहुत से हैं जबकि उम्र थोड़ी सी है। इस पर गौर करें, कितनी उम्र रह गई है मेरे आपके पास। आप देखिए कि हम सब अपनी ज़िंदगी को देखें तो आधी उम्र तो गुजर चुकी है ना, पता नहीं पूरी गुजर गई है, कुछ ही दिन रह गए, कुछ साल हैं, किसको पता। अब जो वक्त है ना उसमें वो इल्म लेना है जो नफ़ा देगा, और बाकी उलूम को छोड़ दो, उसकी परवाह ना करो। बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद फिर पढ़ते हैं, डॉक्टर्स हैं वो फिर पढ़ रहे होते हैं, बस लोग रिफ़्रेशिंग कोर्सेज कर रहे हैं, कोई काम किया तो उसके, कई लोग बड़े उम्र में आके फिर पढ़ना शुरू होते हैं, नहीं इसके बाद जॉब करेंगे, टीचिंग कोर्स है, BDS कर रहे हैं। लेकिन जो असल इल्म है वो ये है कि जिसके बाद अल्लाह की खशियत दिल में आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी। इसमें आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई आपको अपनी बात इसमें नज़र आई? नहीं, तो फिर अगला पढ़ते हैं। अहले इल्म के फ़ज़ाइल, पेज 13। फ़ज़ैल रहमतुल्लाह का कौल है, बादशाह और अच्छे, हर जुमले पे ना गौर किया करें, तवज्जो आपकी बिल्कुल उस जुमले पे हो जिसको मैं अदा कर रही हूँ। बादशाह और खलीफा मर जाते हैं तो इनका ज़िक्र भी मर जाता, जबकि उलमा फौत हो जाते हैं तो इनका ज़िक्र बाकी रहता। इसकी कोई मिसाल है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का नाम आता, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का नाम आता, अबू हुरैरा का नाम है, सरासर इल्मी शख्सियात है। आज तक बादशाह कितने गए, उंगलियों पर गिनेंगे, चंद लोगों के बाद आपको याद ही नहीं होगा कि आज से 25 साल पहले कौन बादशाह था। याह्या बिन नबी कसीर कहते हैं कि उलमा नमक की तरह हैं, जब नमक ख़राब हो जाए तो इसे कोई चीज़ सही नहीं कर सकती, बल्कि मुनासिब होता है कि इसे पाँव से रौंद दिया जाए। लिहाजा उलमा को ख़राब नहीं होना चाहिए कि बल्कि इन्हें अपने आप को खैर और सलाह पर कायम रखना चाहिए ताकि वो लोगों में जलील ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ज़रा सा इस पर गौर करें, नमक की तरह ख़राब नहीं होना। नमक ख़राब हो जाए ना तो फिर फेंक देते हैं, आपको पता है, क्योंकि फिर गलत मसले बताएंगे। जिन उलमा ने दीन को प्ल्यूट कर दिया, बाद वाले क्या करेंगे? मुजाहिद का कॉल है, ये कौन थे आपको पता है? मुजाहिद इब्ने अब्बास के स्टूडेंट थे। 30 बार इन्होंने इब्ने अब्बास से कुरान पढ़ा था। हम एक से दूसरी बार पढ़े, कहते पढ़े में बड़ा आता है हमें, हम दोबारा पढ़ने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। इन्होंने 30 बार पढ़ा था। क्या कहते हैं? उलमा चले गए, मुतालिम बाकी रह गए। तुम्हारे दौर का मुज्तहिद हमसे पहले लोगों में खेलने वाला होता था, यानी जिसे आजकल मुज्तहिद कहा जाता है, वो पहले दौर में तिफले मकतब, यानी बच्चा, तिफल कहते हैं बच्चे को, मकतब मदरसा, तिफले मकतब कहलाता था। ये ताबईन के दौर की बात है। क्या पता चला कि जो जितना दीन पे मेहनत करेगा उतना उसका इंशाल्लाह ज़र्फ़ बढ़ेगा। बिकर बिन अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रियाकार आलिम की पहचान ये है कि लोगों को शुरू में इल्म की तरफ खूब रग़बत दिलाए ताकि वो इसके पास पढ़ने आए, फिर अगर कोई दूसरे आलिम के पास जाने का मशवरा करे तो इसको इल्म की रग़बत ना दिलाए। अगर मुखलिस होता तो हर हाल में इल्म की तरगीब देता, ख्वाह इसके पास के पढ़ने आता या किसी और के पास पढ़ने जाता। ज़रा सा इस पे सोचिए, जो लोग मदारिस मसाजिद और अपने इल्म पर फ़ख्र करते हैं और इन इसकी खिदमात गिनवाते हैं और दूसरी मस्जिद, दूसरे मदरसे या दूसरे आलिम के पास किसी तालिब इल्म का पढ़ना पसंद नहीं करते, इन्हें चाहिए कि इस नुक्ते पर गौर करें। देखिए ये बड़ा सख्त इम्तिहान है, मैंने इस चीज़ का दर्द बहुत दिल में महसूस किया। अच्छे खासे लोग यदि कई जगह जहाँ भी नया काम शुरू करें, जहाँ भी कोई कोर्सेज शुरू होते हैं ना, आप देखिएगा कि वो लोग जो पहले से किसी जगह दीन का काम कर रहे होते हैं ना, वो थोड़े से अपसेट होने शुरू हो जाते हैं। नए लोग खुश हो रहे होते हैं और वो क्या कहते हैं, नहीं अब हमारे स्टूडेंट उधर चले जाएंगे, फिर अपने साथियों को रोकेंगे, नहीं आप तो इधर कर रहे हैं उधर ना करें। ठीक है, हर एक अपना करता रहे, किसी को मना नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। बस आप देखिए, मैं अपने ऊपर लेके बताती हूँ कि आप सब यहाँ बैठी हैं, इंशाल्लाह मंडे से यहाँ नया कुरान शुरू हो रहा है, अल्लाह की रहमत है। लेकिन अगर आप में से कोई सिस्टर यहाँ से घंटा दूर है या 2 घंटे दूर है, या उनको ये टाइम ही नहीं सूट करता, अब वो मेरे पास आती हैं कहती हैं कुरान तो सीखना लेकिन ये वक्त सूट नहीं कर रहा, जगह नहीं, ये वो, और आपने सबके साथ मशवरे से ये कर दिया है, तो मैं क्या करूँ? आप मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मैं आपसे कहूँगी कि सिस्टर ये जगह दूर है, क्या आपके करीब है कोई जगह, देख लें वो क्या पढ़ा। देखिए गलत अकीदा नहीं होना चाहिए, गलत इल्म ना लें, सही इल्म मिल रहा है और आपको उनका तरीक़ाकार भी समझ आता है तो आप उधर चले जाएँ। देखिए ना, आप चाहती हैं आपका बच्चा सेहतमंद रहे तो वो एक डॉक्टर से दवा ले ले या दूसरे से, आप खुश हैं कि वो सेहतमंद है। अगर आपको इल्म से प्यार है तो फिर आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझसे इल्म ले लोगे तो तुम ठीक हो, दूसरे से लोगे तो गलत है, फिर सॉरी, आपको अपने आप से प्यार है। और एक जुमला मैं वर्ल्ड वाइड जहाँ जाऊँ मैं बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मुझसे सीखें, हाँ ये है कि मेरे कहने पर सीख लें तो अजर मुझे मिल जाएगा। खुश हूँ आप दूसरों को देख कर, हमने सबने मिल के जन्नत में जाना है, और क्या सारा शहर यहाँ आ सकता है? और आ जाएगा तो बिठाएंगे किधर? और यहाँ सीख के चले जाएंगे तो क्या वो बड़े मुफ्ती बन जाएंगे? नहीं, सही इल्म देखिए, सोर्स ठीक हो, कुरान और सुन्नत, तरीक़ेकार अच्छा हो, महज़ब अंदाज हो, दमाजरत के साथ, के कई लोग सिखाते कुरान सुन्नत है, तरबियत ही कोई नहीं। इतने बड़े बड़े मदारिस हैं, जामियात हैं, बच्चियों को बात नहीं करनी आती, कॉन्फिडेंस नहीं, गंदा इतना है, डिसिप्लिन कोई नहीं, वादा खिलाफी बड़ी है। तो सही महज़ब दी बेस्ट चूज़ करें फिर कुर्बानी दें। लेकिन अगर आपसे कोई मुझसे आके आप पूछेंगे ना कि फलां जगह क्लास होती है हम जाएं, जाइए, आप कहीं ले रहे हैं पहले से क्लास, जाइए उधर पढ़े। मैं नहीं कहती कि अब वो छोड़ के इधर आ जाए, हाँ उसके साथ मैनेज कर सकते हैं तो फिर तो सोने में सुहागा, कुछ उधर से ले कुछ इधर से ले, वर्क क्लैश नहीं कर रहा, दिन भी हैं कोई बड़ी बात नहीं, वीकेंड पे कहीं चले जाएँ, वीकडेज भी इधर आ जाएँ, सुबह कहीं जाते हैं शाम में आ जाएँ, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तासुब बहरहाल दिलों में नहीं होना चाहिए, इससे सुनने वालों के दिल छोटे हो जाते हैं, और माजरत के साथ कि कई दीनदारों के दिल छोटे हैं, इसलिए उम्मत सारी घटी पटी है और आपस में एक दूसरे से बदगुमानियों वाली है। फिर इसी तरह ज़याद बिन जुदैर कहते हैं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने मुझे कहा, क्या तू जानता है कि इस्लाम को कौन सी चीज़ गिरा देती है? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, आलिम का फिसल जाना इसे गिरा देता है। अस्तग़फिरुल्लाह, आलिम कैसे फिसलता? मैं नाम नहीं लेना चाहती। आज कई ऐसे लोग हैं जो दीन की बुनियादी तालीमात में तब्दीली कर चुके हैं, अकीदे बदल चुके हैं उनके, अल्लाह के नबी के मुकाम को बदल दिया उन्होंने, बिदात आ गई, लेकिन आपको पता है कि वो पीछे से देखे तो मदीना यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए, इल्म लिया उन्होंने, हदीसें उनको भी बड़ी आती हैं। आप नाम लिए बगैर सोचें आज जितने बातिल फिरके हैं इस्लाम के नाम पे, क्या उनका इल्म नहीं है? उनके उलमा के सामने बड़े बड़े मोटे मोटे कुरान नहीं होते? सब होता है, फिसल जाते हैं। इसी तरह एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, तो उनके बारे में किसी ने बताया कि वो इतने साहिब तकवा शख्स थे कि उस बस में नहीं बैठते थे जिसमें औरतें होती थीं, और आजकल हालात ये हैं कि वो औरतों के साथ मिल के सियासत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि किताब के साथ मुनाफिक का झगड़ा करना इसे फिसला देता है, यानी जिसमें दिल में निफाक है। मिसाल देती हूँ, आप इल्म लेने आए, आप कोई मसला मुझसे पूछते हैं, मैं आपको कुरान से बता देती हूँ, आप कहते नहीं। फिर इस तरह तो आज के दौर में नहीं होता ना, नहीं कोई रास्ता निकाले। जैसे मिसाल देती हूँ, दो तीन दिन पहले हम किसी जगह थे, तो बड़ी हाई क्लास सिस्टर्स थी जिनके साथ थी, तो मसला आ गया हमेशा की तरह औरतों का फेवरेट टॉपिक प्लकिंग का। अब औरतें मेरे मुँह से क्या सुनना चाह रही थी कि कोई बात नहीं मियाँ कहे तो कर लो, मियाँ नाराज़ ना हो जाए, फलाना, वो अपने अपने हिसाब से बातें कर रही थी। ये जो है ना कि मुनाफिक का झगड़ा, ये झगड़ा क्या होता है कि तुम किसी भी तरह जायज़ करार करो, और जैसे कुरान में ना कि वद्दु लौ तुदख़िनु फयुदख़िनु, ये चाहते हैं तुम थोड़े से ढीले पड़ो बाकी ढीले हम खुद करेंगे। और उन्होंने बाहर जाके कोई बुरी बात थोड़ी बतानी होगी, वो उतनी, हाँ उन्होंने कह दिया कर लो प्लगिंग, घर टूटता है इससे बेहतर है प्लगिंग कर लो, बस समझ रहे। जब कोई दीन की बात आप किसी से सुने, वल्लाह ही उसको मजबूर ना करें, नहीं कुछ तो होगा, कोई तो रास्ता निकाले। देखिए वो बेचारा अपनी जान छुड़ाने के लिए ज़रा सी ढीली बात कर देगा, वो भी फिसलेगा, आप भी फिसल जाएंगे। इसी तरह तीसरा, और गुमराह करने वाले पेशवाओं का हुक्म भी इसे गिरा देता है। गुमराह करने वाले पेशवा कौन है? जो अपनी गद्दियाँ बचाते हैं, जिनको अपने लिए वोट चाहिए, जिनको अपने साथ लोगों के मजमे चाहिए। आज देखिए लोग दीन में आने वालों को गिनते हैं, कितने लोग आते हैं, कितना मजमा था, हज़ारों का मजमा था, अच्छा चंद सौ तो आई होंगे, नहीं जी, ओ अच्छा फिर ठीक नहीं। यदि ये भी एक ज़ाहर परस्ती होगी कि आते कितने हैं, यकीन करें जिस दिन ये कोर्स शुरू हो जाएगा ना कमिटमेंट के साथ, अल्लाह ना करे सिर्फ एक सिस्टर भी रह जाएगी ना, ये कोर्स नहीं हिलेगा अपनी जगह से, क्योंकि शायद वो एक सिस्टर इमाम बुखारी बन जाए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर इमाम बुखारी अकेले होते क्लास में और उस्ताद कहता नहीं जी जाओ क्लास में, आता ही कोई नहीं, पढ़ना क्या, तो ये उस उस्ताद का कितना नुकसान हो जाता। हर बंदे की कदर करें, हर बंदे की इज्जत करें, वो अपनी जगह पे अहम है। इसी तरह से अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह कहते हैं, जब अहले इल्म में से कोई किसी को अपने से ज़्यादा इल्म वाला मिलता, गौर से सुनिएगा, ख़ास तौर पे आज इल्म वालों के ये फितनों में आता है, जब अहले इल्म, थोड़ा सा बच्ची को अंदर ले जाइए, आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, जब अहले इल्म में से कोई किसी को अपने से ज़्यादा इल्म वाला मिलता तो वह इसे गनीमत जानता और इससे सवाल करता और इससे कुछ सीखता, और जब अपने से कम इल्म से मिलता तो इसके लिए तवाज़ो इख्तियार करता, यानी उसके आगे बड़ा नहीं बनता बल्कि बड़ा आजिज़ बनता और इसको इल्म सिखाता, और जब अपने से बराबर इल्म वाले से मिलता तो इससे इल्मी मुज़ाकरा करता। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए इसको दोहराएं, तीन चीज़ें हैं। आपको पता चला इस शहर में आपसे कोई बड़े इल्म वाला, आपसे ज़्यादा इल्म वाला आ गया, क्या करना चाहिए? नहीं जी मैं तो पढ़ाती हूँ, जी मैं तो खुद क्लास लेती हूँ, मैं क्यों जाऊँ? फिर लो मेरी शागिर्दें वहाँ आएंगी, वो मुझे देखेंगे, अच्छा बाजी इधर आई हैं पढ़ने, ये तो मैं पढ़ाती हैं, तो फिर इनका तो इल्म कम होगा। ये फितना है, कई लोग ऐसे फितनों का शिकार है, गलत पढ़ा रहे हैं। चार में से दो आयतें गलत पढ़ते हैं, फहम है कोई नहीं, तर्जमा करते हैं पता नहीं किधर की बात किधर जोड़ते हैं, लेकिन नया सिखाने वाला कोई मौजूद हो इल्म नहीं लेते उसे अना की खातिर। हम भी करते हैं जी, हमारा भी है जी, हमारे पास भी क्लास होती है। याद रखिए, जहाँ आपको पता चले बड़ा इल्म वाला है तो चले जाएं। इसकी मिसाल है कोई कुरान में, किसी को याद है? मूसा अलैहि सलाम वक्त का नबी, साहिब तौरात, पता चला कि मूसा आपसे भी ज़्यादा इल्म वाला कोई है, चल पड़े और क्या कहा, चलता ही जाऊंगा मैं, नहीं टलूंगा। तो हमेशा अपने से ज़्यादा इल्म वाले से फ़ायदा उठाएं। देखिए, आप उसकी खैर लेंगे, उसको उस्ताद बना लेंगे, आप उसके शागिर्दों में चले जाएंगे, आप उससे कुछ सीख कर आएंगे, कल आप उसका अपनी क्लास में वो गलती नहीं करेंगे। चले, अपने से कम इल्म वाला आ गया, अब अकड़े पड़ रहे हैं, गर्दन अकड़ी भी है, हम बात नहीं करते जी, हमारे पास वक्त नहीं है जी, हमारी बात नहीं है, किसी और से रब्ता करें फिर हमसे बात करें, डायरेक्ट नहीं बात करते, नंबर नहीं देते, नहीं। ईजी अप्रोचेबल रहिए, बराबरी पे रहें। और थर्ड थिंग, बराबर वाले हैं, उनको भी आता है आपको भी आता है, कुछ उनको नहीं आता कुछ आपको भी नहीं आता, तो उनसे मुजाकरे करें, उसमें एक दूसरे से सीखें। कितना खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे कि आज हम सब का ऐसा ही मेयार हो जाए। और ये सारे जो अकवाल मैं बता रही हूँ ना, आप देख रहे हैं बुक के नीचे लाइन के नीचे जितने रेफरेंसेस हैं ना, बस आप देखिए कि पेज 14 पे 1 लिखा हुआ है ना, तो वो कॉल जो था वो अदुर्रे मंजूदार हम हमसे अहद लिया गया, एक बुक है अरबी की, उसमें है। चूँकि ये अरबी बुक्स के तर्जमे होते हैं ना, तो मैं नाम भी नहीं पढ़ रही कि ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर कॉल का रेफरेंस मौजूद है। ये इस बुक की खूबी है कि ये मन घड़त बातें नहीं है, बल्कि तारीख यानी इसका पीछे रेफरेंस मौजूद है। इसी तरह इमाम ओज़ाई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बेहतरीन वज़ीर अच्छी राय है। किसी ने आपसे राय मांगी, आप अच्छी राय दें। वज़ीर कौन होता है पता आपको? एक तो आप कहते हैं ना बादशाह का वज़ीर, लेकिन वज़ीर लफ्ज़ है विज़र से, विज़र कहते हैं बोझ को, वज़ीर कहते हैं फ़ाइल के वज़न पे बोझ उठाने वाला, क्योंकि असल सारे काम वज़ीर ही करता है, बादशाह बेचारा तो बैठ के सिर्फ जैसनो कह रहा होता है। तो वज़ीर, हज़रत मूसा ने भी कहा था ना, वजली वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में मेरा वज़ीर बना दीजिए। तो क्या पता था कि किसी को अच्छी राय दे दें तो आप उसके वज़ीर हैं। जब लोग किसी चीज़ में सख्ती करते तो तौस रहमहुल्लाह इसमें रुख्सत दे देते, और जब लोग किसी चीज़ में रुख्सत मांगते तो इसमें सख्ती करते, क्योंकि लोगों को बैलेंस पे रखना होता है ना। कभी शिद्दत बरतता है कोई बंदा, ये भी नहीं ठीक होता, और कोई बड़ा ही ढीला है, ये भी नहीं ठीक, बीच में हमारा दीन दरमियाना दीन है। सैयदना मिसवर बिन मखरमा, मिसवर बिन मखरमा राह रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, क़ब्रों ने ऐसे अजीम लोगों को छुपा लिया है कि अगर वो मुझे मेरे तुम्हारे साथ बैठा हुआ देख लें तो मुझे इनसे शर्म आए। क्या पता चला कि दुनिया से बड़े बड़े आलिम चले गए, यानी अब लोग इतने कम अक़ल हैं जबकि सहाबा कराम, यानी अब लोग इतने कम अक़ल हैं जबकि सहाबा कराम रदी अल्लाहु अन्हुम बहुत हिल्म और इल्म वाले थे। सुफियान बिन उयैना का बयान है, सुफियान बिन उयैना का बयान है कि अल्लाह के नज़दीक नेक लोगों का जिक्र करते हुए, सुफियान बिन उयैना का बयान है कि नेक लोगों के अल्लाह के नेक लोगों का जिक्र करते वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, बशर्ते कि कोई माने ना हो, जैसे तस्वीर, कुत्ता, घंटी, मौसीकी वगैरह। मसलन जैसे अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी नेक लोगों का तस्करा, तो अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना हो ना जिससे फरिश्ते रुक जाते हैं, तो कहते हैं उनके तस्करे से भी वहाँ पर रहमतें उतरने लग जाती हैं। सुभान अल्लाह। खलील बिन अहमद कहते हैं, मेरी ज़िंदगी के दिन चार किस्म के हैं। आइए आप और मैं भी देखते हैं कि हमारे भी ऐसे ही हैं। नंबर एक कहते हैं, मैं घर से निकलता हूँ और अपने से बड़े आलिम को देखता हूँ तो इससे सीखता हूँ, ये मेरी कमाई का दिन है। जैसे आज आप क्या कर रहे हैं, कमाई, इल्म ले रहे हैं ना, तो इल्म एक बहुत बड़ी कमाई है, एक अर्निंग है। दूसरा दिन वो है जिस दिन मैं अपने से कमतर को देखता हूँ तो इससे इल्म सिखाता हूँ, ये मेरे अजर का दिन है। यानी अजर किसका है कि जो दूसरे को सिखा दे, उसको तो यही बहुत खुशी हो रही है ना कि दूसरे उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तीसरा दिन वो है कि मैं घर से निकलता हूँ और अपने बराबर के आलिम को देखता हूँ तो इससे मुज़ाकरा करता हूँ, ये मेरे इजहारे इल्म का दिन है। यदि जब आपके सामने बराबर का बंदा बैठा हो तो मज़ा भी तभी आता है, तो आप इजहार करते हैं, आप हदीस सुनाते हैं, जवाब में वो कोई सुनाते हैं, आप आयत पढ़ते हैं फिर वो भी पढ़ते हैं। इसी तरह चौथा दिन वो है कि मैं घर से निकलता हूँ और अपने से अदना को देखता हूँ, मगर वो खुद को मुझसे ऊंचा समझता है, यानी है कुछ नहीं पर समझता कुछ है। मैं इससे मुखातिब नहीं होता, ये मेरे आराम का दिन होता है। सुभान अल्लाह, क्या पता चला कि जाहिलों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इल्म बजाते खुद इस चीज़ का कासित है कि साहिब इल्म को दूसरों के मुकाबले में अफजल समझा जाए। सुफियान बिन उयैना से पूछा गया, इल्म को हासिल करने का असल मोहताज कौन है? उन्होंने जवाब दिया, आलिम, क्योंकि इसकी गलती बहुत कभी होती है। यानी इल्म हासिल करना सबसे पहले किस पे फ़र्ज है? आलिम पे। जब कोई बात करने लगे, किसी मौजू पे बात करे, उसको दोबारा पढ़े, उसको दोबारा सुने, गौर करे, क्योंकि अगर गलत है पीछे और हाफ़ज़े में कोई चीज़ गलत चली गई तो फिर वो पीछे से भी गलत होगी। तो ये थी चंद बातें इल्म पे, आप लोग कुछ शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है इल्म के फ़ज़ाइल जानकर? आप देखिए इसके बाद क्या दिल करता है। साथ पढ़ने से फिर बोर नहीं लगती। तो अब इस सब के बाद करना क्या? मैंने आपने आज से देखिए माशाल्लाह, आज बुध है, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, चार दिन है। आप सब एक काम ले अपने ऊपर, मैं आपको देती हूँ मोहब्बत से, प्यार से, कर लेंगे तो खुशी होगी, नहीं करेंगे तो नाराज़गी कोई नहीं है, आपका अपना फ़ायदा है। आप इस शहर में जिस जिस को भी जानती हैं ना, माँ हैं, बेटियाँ हैं, और ख़ास तौर पर कि वो अभी तक कुरान नहीं पढ़े हुए, आप इस चार दिनों में उनको विज़िट करें, बहाने से मैं आपके घर आना चाहती हूँ, मिलें, ऐसे ही कोई छोटा सा कोई बिस्किट, कोई ऑरेंज, कोई दो थोड़ी सी खाने की चीज़ ले दें तोहफे में, फिर वहाँ बैठ के अपने रंग में कि मंडे से एक कोर्स शुरू हो रहा है, ये टाइमिंग है। अच्छा, फ्लायर जो छपा था ना उस पर 2:30 का टाइम लिखा गया है, लेकिन साथियों से जो डिस्कशन हुआ उससे पता चल रहा है कि बच्चों के स्कूल से आने पहुँचने में 2:30 का टाइम पॉसिबल नहीं होगा, खुद हमारे अपने साथियों में भी ना, तो इसके लिए भी ये कि 3 बजे का टाइम है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा सेटिंग होगी और जो स्टूडेंट जम जाएंगे फिर उसके बाद हम उसको बाद में उनके कहने पे बदल भी सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग टाइम 3 बजे होगा और पूरा आपको स्केड्यूल दिखाया जाएगा। अभी तो हम रैंडम लेक्चर्स करते हैं और कई चीज़ें आपको तो सेट हो रही हैं, रोज़ ही कमरा सेट हो रहा है, जगह अभी आपको नहीं अंदाज़ा यहाँ अभी कितना काम हो रहा है और होने वाला है मज़ीद, और माशाल्लाह साथी कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा जब कोर्स शुरू होता है उसका एक एक मिनट का टाइम टेबल बनता है, आपको भी पता होता है 15 मिनट इस चीज़ के हैं, उसमें उसी वक्त में हमने सब कुछ करना है। तो इंशाल्लाह 3 बजे मंडे को शुरू होगा। फ्लायर आप लेकर जाएं घर में, और अगर फ्लायर पर 2:30 लिखा है तो उसको काट के 3 कर लीजिएगा, और मंडे की सबको वैसे ही खुली दावत है ताकि नए लोग भी आएँ, इंट्रोडक्शन होता है उस दिन, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह साथियों के लिए कोई उनकी ज़ियाफ़त का भी इख्तमाम कर लेंगे, उन्हें क्या पाकर सुने आप देखें क्या होता है, और बेटियों को भी लाएँ, और आप खुद लोगों की जैसे आपकी दोस्तें हैं, आपकी बहनें हैं, आपके रिश्ते हैं, उनको कह के आओ चलो, खुद नहीं आ रही ना आप उनकी बेटियों को ले आए। देखिए आज के दौर का सबसे बड़ा जिहाद यह है कि लोगों के दिल में कुरान की भूख लगा दें। बच्चियों की शादी नहीं हुई, बेस्ट एंड बेस्ट टाइम है, बाद में जिम्मेदारी। अब देखिए जो बच्चों के साथ आती हैं, इतनी दुआएँ मेरे दिल से उनके लिए निकलती हैं, हालांकि वो बच्चों के साथ डिस्टर्ब हो रही होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये आज पहले दिन बच्चा रो रहा है, अगले दिन नहीं रोएगा, तो मत सोचें कि बच्चों वाले नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ये जो नीचे का हम रूम कर रहे हैं ना, अगर लोग ज़्यादा होंगे ना तो हमारा सेटअप ऐसे होगा कि अब यहाँ भी साउंड सिस्टम आ रहा है, इस रूम को हीटर के साथ जो भी कर करा के बच्चों की माँ इधर बैठ के भी सुनेंगी तो आवाज़ ऊपर से उनको आएगी इंशाल्लाह ताला। और ऐसा ऐसा देखिएगा एक एक चीज़ आ रही है, हम स्क्रीन लगा सकते हैं जो ऊपर से बच्चों के वाली माँ इसी रूम में भी बैठ के सुने, तो हमारी तरफ से भी अरेंजमेंट होगा, लेकिन अगर माँ खुद भी थोड़ी देर बच्चे के पास आती है बैठती है तो आवाज़ें नहीं आएंगी। तो यानी कहने का मकसद ये है कि दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी ना, लेकिन बच्चों वाले घर ना बैठें, ये याद रखिए, अगर बच्चों की माँ नहीं आएंगी तो उम्मत किसने तैयार करनी है। और आप कहते हैं बच्चे रोते हैं, बच्चे नहीं रोते, हमारे अपने साथियों में मिसालें हैं, बच्चा पेट से लेकर गोद में आया कानों कान खबर नहीं हुई, बच्ची को भी पता था कि ये माँ बचपन मेरे पेट से ही मेरे साथ लगी हुई है, कहती वो रोती भी नहीं, जूँ ही आवाज़ सुनती है चुप होती, मुझे कहती आपकी आवाज़ सुन के चुप हो जाती है क्योंकि वो आदी हो चुकी है। पहले दिन हर बच्चा तंग करता है, आएँ तो बच्चे की उम्र के मुताबिक उसके कोई कागज़ कलम साथ ले आए, कोई उसको जो माँ करे बच्चा वो करे तो माँ को खुश, बच्चों को खुशी होती है। छोटे हैं तो कोई ऐसे खिलौने जो बजते नहीं हैं, फोम के, कोई कपड़े के, कोई लोगो के, ऐसे वो साथ रखें, लेकिन आपका ये जिहाद है कि आप बच्चे को गोद में लेके भी पढ़ें, क्योंकि मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो साथी आगे बढ़ते हैं ना वो यंग मदर्स हैं, क्योंकि उनको गम होता है कि हमने अपने बच्चों को पालना है। ठीक है, तो इन 4 दिनों में हर मुमकिन तरीके से साथियों को दावत दें, ख़ास तौर पे ट्रायल पे। और याद रखिए कि लोग पूछेंगे क्या इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्या वैसे आ सकते हैं, एवरी वन इज़ वेलकम। हाँ, आप जो लोग नियत किए हुए हैं आप अपने नाम नंबर इधर जमा कराएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक पहले के अंदर आपको सारा सेटअप दिखाएंगे, फिर आपकी ग्रुपिंग होगी, आपकी रोल कॉल लगेगी, हर चीज़ सिस्टम से होता है ना। अगर आपने बस पे जाने और टिकट आपने नाम ही नहीं लिखाया हुआ तो आपको टिकट ही नहीं मिलेगा, जहाज़ पे जाए और नाम ही ना हो तो ये एक पढ़े लिखे माशरे का असूल है। आपको किताबें लेनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी, ज़ाहिर किताबों के बगैर कुछ नहीं होता। शुरू में सिर्फ 2-3 किताबें हैं, आप में जो साथी अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरे लोगों के लिए ले सकते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं कि ये जैसे आज ये बुक शुरू हुई है, अब आप देखिए ये बुक्स कहाँ से चल के कहाँ आती हैं, ख़र्चा तो होता है। एक सूरत है आपको फ्री बांट दी जाए, आप कल आए ना, अगले दिन आप आए ना, जिन्होंने पैसे इसके दिए, जिन्होंने स्पॉन्सर किया, वेस्ट हो गया। आप खुद अपने पैसों में से एक दिन एक चाय का कप कम कर दें, कुछ कम करें, एक जोड़ा कम करें, आप किताब ले सकते हैं, कोई बड़ी बात। इसके बावजूद जो नहीं ले सकता वो ये ना सोचे कि नहीं लेनी, वो हमें बता दें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसके लिए स्पॉन्सर कर देंगे। लेकिन एक तरीकाकार है, इसी तरह कोर्स है, इसकी शुरू में एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन रखेंगे ताकि सिस्टम चलता रहे। पैसों से कुछ होता नहीं है, खर्चे तो होंगे, होते हैं, आपके पैसों से खर्चे नहीं पूरे होने वाले, लेकिन ये सिर्फ आपको बांधने के लिए है। लेकिन इसके बाद आप कुछ नहीं करते, नाम नहीं लिखना, आपको रोल कॉल नहीं चाहिए, आपको ग्रुपिंग में बैठ के सबक नहीं सुना ना, आप रोज़ आएँ, बैठ के चले जाएँ, तफसीर के वक्त पर आ जाएँ, लेक्चर के वक्त पर आ जाएँ, बस लाएँ। और दूसरा कोई सवाल ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोगों ने आपसे पूछने हैं। कभी मैं किसी को कोई कोर्स की दावत और कोई कहता है फ़ीस कितनी है, तो मैं कहती हूँ वो फ़ीस है जो आप दे ही नहीं सकते। इसकी कोई फीस दे सकता है? मुझे सच बताएं, इसके बदले में अगर जन्नत का रास्ता आसान होता है इसकी कोई फीस ले सकता है? कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। ये सिर्फ एक सिस्टम होता है, सब के लिए खुला है, कोई एक भी फीस नहीं देगा फिर भी चलता रहेगा ये काम। शर्त यह कि कमिटमेंट चाहिए, आपका सीखने का इरादा है, आपकी नीयत है। जी आप बच्चे और आप याद रखें कि जितना आप इल्म लेंगे ना, बस आपकी एज है, जैसे आप में कुछ लोग हैं, आप घर में बहुएं आ चुकी हैं, खा रही हैं, पका रही हैं, आपके लिए ये 2-3-2.5 घंटे इतने कीमती हो जाएंगे कि आपको फिक्र ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए हर बंदे का हक है कि वो थोड़ी देर घर से निकले, सुबह से शाम तक घर में है, वही बच्चे शोर है, सर में दर्द है, बीमारी, आप बीमार हैं ना, थोड़ी देर निकले। आपको तो कुरान का एक नाम शिफा भी है, शिफा लिमा फिस्सुदूर, है ना, आप फील करेंगे इससे फ़ायदा होगा। तो ना बूढ़ा इससे रुके ना बच्चा रुके। बच्चों वाली माएँ 3 बजे का टाइम रख ही इसलिए रहे हैं कि आप बच्चों से फारिग हो चुकी हो, इस वक्त अमूमन बच्चे भी ट्यूशन पे चले जाते हैं, कारी साहब के पास है, घर के किसी बड़े बच्चे को जिम्मेदार बनाएं कि बेटा मैं सुबह से थकी हुई हूँ, अब ये मेरा टाइम है, मुझे फारिग करो, मैं जा रही हूँ, तुम बच्चों को देखो। किसी के मियाँ की कोई शिफ्ट ऐसी है, पूरा हक लें, शर्मिंदा होकर ना ये कोर्स करें आप। आप अपने मियाँ से बात करें कि मियाँ साहब मैंने अपने और आपके लिए एक बड़ा अच्छा फैसला किया है, वो ये है, मैं सीख के आऊँगी, रात को मिलके बैठेंगे, बातें करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, हम मिल के बात करेंगे, फिर हमारे बच्चे सीखेंगे। देखिए जब तक अमली तौर पे नहीं सीखेंगे चेंज नहीं आएगी। ठीक है
जी,
तो ये
आज मैं चाहती हूँ कि वही लफ्ज़ मेरे से लोग सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने इतनी मन की थी, मैं बकायदा जाती रही थी, मैंने छुट्टी कभी नहीं की थी, बल्कि आधा घंटा पहले जाना आधा घंटा बाद में आती थी। मेरे मियाँ ने इसलिए ड्यूटी उठाई थी, वो बड़े रोज जा करते थे, उदास करते थे, ये दुआ करते थे अल्लाह पाक अगर इनको मिला दे मेरे साथ तो फिर तो मैं जब जा सकती हूँ, वरना मैं नहीं छोड़ूँ, मेरे पास ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल बना दिया, अल्लाह हर ख्वाहिश पूरी करता है ऐसे कि जैसे करीब से सुनता है, अल्लाह मेरे करीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
इंशाअल्लाह ताला
आपको इतना कुछ देगा, इतना कुछ देगा कि आप सोच नहीं समझे कि कहाँ से हमें ये सब कुछ मिले।
इंशाल्लाह बाकी ये कि पूरी कोशिश करें, कोई बंदा रहे ना और एस्टीमेशन दें, खाने का कुछ अरेंज करेंगे उस दिन इंशाल्लाह, तो फिर साथी जितने ज़ाहिर है कि कम आएंगे तो खाना ज़ाया होगा, और ज़्यादा आएंगे और तो हम उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकेंगे, तो आप लोग भरपूर तरीके से उसमें बताएं। आप लोगों को किसी ग्रुप में ऐड किया हुआ इन लोगों ने व्हाट्सएप के, या कोई आपका रब्ता है इधर? कोशिश करके अगर आप किसी भी तरह मैसेज दे सके बाहर, अगर आपका नंबर है, मैं इनको कहती हूँ कि आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड करें, व्हाट्सएप तो सभी के पास होता है, आपके पास सबके फ़ोन नंबर्स लें जो भी साथी हैं, इनका एक ग्रुप बनवाएं, उस ग्रुप के इनका नाम ही रख दें यहाँ की क्लास के नाम के साथ, है मुझे भी उसमें ऐड कर दें, मैं आपको गाइड करूँगी। तो आप सब आज से लेकर इतवार तक जिन जितने लोगों को दावत देंगे ना, तो फिर उसमें लिख दें कि मेरा ख्याल है मेरी तरफ से 10 लोग आएंगे, 5 आएंगे, 8 आएंगे, ऐसे लिख दें ताकि हमें एक एस्टिमेशन हो जाए कि हमने खाना कितना अरेंज करना है। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام